ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 38। इत्थम नृ त्रियक ऋषि देव जस अवतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपाना धर्मं महापुरुष पासि युग अनुवृतं छन्नः कलौ यत् अभवः त्रिजुगः अथ स त्वम् इत्थम् नृत्यकम् ऋषिदेवजसावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्त्यम् छन्न कलौ यद्भवत्रिजुगो अथ सतम् इत्थम् नृत्यक् देवयसावतारै इत्थम् नृत्य ऋषिदेवजसावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्तम् छन्न कलौ यद्भवत्रिजुगो अथ शतम्। ماتا جی इस प्रकार नृ मनुष्य जैसे यथा कृष्ण तथा रामचंद्र त्रियक पशु के तरह जैसे शुकर ऋषि महाऋषि की तरह जैसे नारद परशुराम आदि देवा देवतागण जैसे बामन देव झसा लचर जैसे मछली तथा कछुआ अवतारे ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोकों को विभावयसी रक्षा करते हो हंसी कभी कभी मारते भी हो जगत प्रतिपाना इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वालों को धर्मम धार्मिक सिद्धांतों को महापुरुष हे महान पुरुष पासी रक्षा करते हो जोग अनुवृतम विभिन्न युगों के अनुसार छन्ना ढका हुआ कलौ कलयुग में यत क्योंकि अभव हुए हैं या होंगे त्रिजुग त्रिजु नामक अथ अतएव स वही पुरुष त्वम आप चैतन्य चैतन्यामृत यहाँ पर है आदि लीला भौलुम लाना हे प्रभु इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य पशु ऋषि देवता मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं हे भगवान युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले हैं जिस प्रकार मधु तथा कैटव के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों के रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए युग चार हैं सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग कलयुग को छोड़कर शेष तीन युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव वे अपने आप को भगवान कहे जाने से कतरा रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में विशेष रूप से भागवत 11:5-32 में चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगा सपाषद जगई संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेरत। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवाद जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है, निताई माधव प्रभु कल क्लास दे दिए हैं, इसके पिछले श्लोक जो है श्लोक 37 मैं उस पर क्लास दूंगा और उसी में इसको भी सम्मिलित कर लूंगा। पीछे वाला है तस्मै भवान हय शीर्ष तन्मम ही बिभ्रद वेदम द्रुहो अतिबलौ मधुकौट आख्यो हत्वा अनयत श्रुतिगणान चरजः चमश्च सत्वं तव प्रियतमा तनुमा मनन्ति। हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए, तो आपने रजो तथा तमो गुण से पूर्ण मधु तथा कैटव नामक दो असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सारे महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कक्षा के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आश्रय सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, जो के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रिजुग कहलाते हैं अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के भगवत्ता का प्रतिपादन करते हैं कि भगवान इस संसार का सृष्टि करने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं तथा संहार करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी का मधु और कैटव से रक्षा कर करके वेद को ब्रह्मा जी को दे करके भगवान ने सृष्टि का रक्षा किया। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया है। और सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का अवतार लिए हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तीनों युगों में भगवान आते हैं, 24 प्रकार जो 6 प्रकार के अवतार हैं उसमें से 24 की गणना है, मुख्य जिसमें से 10 अवतार जिसे दशावतार कहते हैं। और तो इस प्रकार से भगवान सतयुग में पालन करने के लिए आते हैं, त्रेता युग में पालन करने के लिए आते हैं, द्वापर युग में पालन करने के लिए आते हैं और कलयुग में पालन करने के लिए आते हैं। सतयुग की बात है, यहां पर मधु कैटव का संहार करके भगवान ब्रह्मा जी का रक्षा किए और वेद को पुनः ब्रह्मा जी को दिए। इस अवसर में वर्णन किया गया है कि भगवान का जो अवतार हुआ वह हयग्रीव अवतार है। ऐसे हयग्रीव नाम का एक राक्षस भी था, वो भी एक बार वेद को चुरा लिया था, तो भगवान मत्स्य अवतार में उसका वध किए थे। यहां पर भगवान आए हैं और घोड़े का रूप धारण किए हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, घोड़ा पानी में कैसे रहेगा? पानी पीने तो घोड़ा जा सकता है पानी में, लेकिन घोड़ा पानी में कैसे रहेगा? तो पानी के भी घोड़े होते हैं, समुद्री घोड़ा कहा जाता है, और बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे शार्क हैं, मगर हैं, वैसे घोड़े भी होते हैं पानी में, जैसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। एनीवे, यह मधु और कैटव का कथा जो है, हम लोग मधुसूदन बार बार सुनते रहते हैं, हमेशा कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। भगवत गीता में कम से कम 5 बार ये शब्द मधुसूदन आया हुआ है, 1:35, 2:1, 2:4, 6:33 और 8:2 में कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। कृष्ण ने कभी इस असुर को नहीं मारा, मधु नाम के असुर को। तो प्रश्न उठ सकता है, तो फिर कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है? आज हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है। अब चलिए मधु और कैटव का जो कथा है उसको थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। एक समय की बात है, भगवान जब ब्रह्मा का सृष्टि किए, ब्रह्मा जी कमलनाथ पर जन्म लिए, उस समय ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए, वे सृष्टि करने के लिए तपस्या करने लगे। ज्ञान प्राप्त था, लेकिन विज्ञान के रूप में कैसे परिणित किया जाए, तो उसके लिए वे तपस्या में लीन हो गए। और इधर भगवान अपने शेष शैया पर शयन कर रहे थे, निश्चिंत हो गए थे कि अब फर्स्ट क्लास ब्रह्मा जी हैं, वो सृष्टि का काम करेंगे, अब मैं आराम करूं। तो आराम से चैन से भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, तो भगवान के कान से कुछ हम लोगों कान से कुछ निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वैक्स को क्या बोलेंगे, खोंट बोलते हैं, खोंट ना, तो भगवान के कान से खोंट निकला, वैक्स निकला, ईयर वैक्स। और वे दोनों दो भाग में बट गया और वे हुए मधु और कैटव। ए मधु और कैटव का लालन पालन समुद्र के देवता ने किया, समुद्र में इन लोगों का पालन हुआ। जब थोड़ा बड़े हो गए तो सोचने लगे कि आखिर हमारे बाप माँ कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मां के पास नहीं था, तो वे लोग, उनका स्वभाव आश्रित था, तो प्रायः आस्तिक स्वभाव वाले लोग देवी का पूजा करते हैं। तो वे लोग तपस्या में मग्न हो गए, तपस्या करने लगे। जब तपस्या किए तो तपस्या के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवी का उपासना करते लक्ष्मी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी ने कहा कि बस मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने वर मांगा कि जब तक हम मरना नहीं चाहें तब तक हम मरे नहीं। और सब लोग मृत्यु से डरते हैं, असुर लोग भी डरते हैं, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था। तो मधु और कैटव लक्ष्मी जी से ये वर मांगे कि हम मरे नहीं, जब तक से मरना नहीं चाहें। तो लक्ष्मी जी एवं अस्तु कह दी, उनको दे दिया, वर दे दिया। अब जब वर मिल गया कि हम मरने वाले नहीं हैं, तो अब करना ही क्या था, अब समझ सकते हैं आप लोग क्या करना था। वहां से देखे तो एक बहुत सुंदर चमचमाता हुआ कोई वस्तु दिखाई पड़ रहा था। तो ये लोग ऊपर आए उस चमचमाते हुए वस्तु को देखने के लिए। देखिए ये नाभ कमल जो था, भगवान शयन किए थे गर्भ समुद्र में, लेकिन यह कमल नाभ बहुत ऊपर आया था। इसी अध्याय में पढ़े हैं हम लोग पहले कि ब्रह्मा जी पता लगाना चाहते थे कि कहां से मेरा उत्पत्ति है, और वे कमल दंड में नीचे आए लेकिन पता नहीं लगा पाते। जैसे हम लोग कभी कभी स्विमिंग करने जाते हैं गंगा जी में चाहे नदी तालाब में, तो नापते हैं कि कितना गहरा पानी है, नापते हैं। तो ब्रह्मा जी भी नाप रहे थे लेकिन नाप नहीं पाए कि मेरा जन्मस्थली कहाँ है। अब ये लोग ऊपर आ रहे थे, ऊपर आ गए थे कि बहुत चमचमाता हुआ कोई लोक है, और वह था ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, हाथ में वेद था, तपस्या में मग्न थे। तो ये दोनों आए और ब्रह्मा जी का आसन देखिए बड़ा सुंदर आसन है, व्यासन बड़ा अच्छा है, कमल आसन है। तो ये लोग कभी ऐसा देखे नहीं थे, तो इन लोगों के लिए सब कुछ नया नया था, कौतुक था इसमें। तो ना कहे आप जो कोई भी हो ये आसन खाली करो, हटो यहां से। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी तो मैं सृष्टि शुरू नहीं किया, ये कहां से आ गए दोनों, क्योंकि इनकी सृष्टि, ये ब्रह्मा जी के भाई थे, हैं? भाई भाई गद्दी के लिए लड़ाई करते हैं ना, तो ये भाई भाई की लड़ाई थी। ब्रह्मा जी का आसन खाली करो, आसन खाली करो और नहीं तो युद्ध करो, जय श्री गौ निताय राधारस व्यार इसम लक्ष्मण हनुमान की जय। या तो आसन खाली करो और नहीं तो युद्ध करो। और ब्रह्मा जी पर बड़ी विपत्ति आ गई, सोचे कि अब मैं करूं क्या। ब्रह्मा जी इन लोगों से लड़ाई करना चाहते नहीं थे क्योंकि ब्रह्मा जी सतगुण प्रधान हैं। ब्रह्मा जी लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। तो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे तो हाथापाई थोड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी वेद को बचा रहे थे क्योंकि वेद था जिसमें सब ज्ञान था, सृष्टि परक वह ज्ञान था, तो वेद को बचा रहे थे। तो ये लोग समझे कि ये कोई बहुमूल्य वस्तु है, इसकी जोर से पकड़ा हुआ है, तो ये लोग छीन लिए उसको और धक्का दे दिए ब्रह्मा जी को, चलो यहां से। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, क्या करूं। तो ऑफकोर्स ब्रह्मा जी भक्त हैं, महाजन हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। वहां से आए तो यहां आकर देख रहे हैं कि भगवान तो योग निद्रा में सोए हुए हैं, और भगवान को जगाने के लिए ब्रह्मा जी खूब प्रयास किए लेकिन भगवान जगे ही नहीं। ब्रह्मा जी का पोजीशन बड़ा खतरा में था, बेचारे करें से करें क्या। तो ब्रह्मा जी जोग निद्रा के प्रति तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे। योग निद्रा भी लक्ष्मी जी की ही एक्सपेंशन है। तो योग निद्रा में लीन हो गए, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए आपको क्या वर दूं। तो कहा कि माता मुझे वर नहीं चाहिए, ये प्रभु सो रहे हैं, इनको जगाइए जल्दी, क्योंकि आपने ही इनको निद्रा में सुलाया है, इनको जगाओ। तो जगा दी, ब्रह्मा जी का इच्छा पूरा की, वो जगा दी भगवान को। भगवान जगे, तब ब्रह्मा जी भगवान से अपना विपत्ति सुनाए। आज के श्लोक में एक वर्ड है जुग अनुवृतम, जुग के अनुरूप, कार्य के अनुरूप। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं कार्य के अनुरूप और युग के अनुरूप। इसका वर्णन मैं इस श्लोक में करूंगा, अभी पहले वाला है, अभी मधुकौटक का है। तो भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन दिए कि आप चिंता मत कीजिए, अब चलिए और मैं चैलेंज करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के कार्य में लगे हुए थे। जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवान उसका सब प्रकार से रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी भगवान के कार्य में लगे हुए थे। अमेरिका कोई डॉलर कमाने प्रभुपाद जी नहीं जा रहे थे, प्रभुपाद जी नौकरी करने नहीं जा रहे थे, कृष्ण के संदेश का वितरण करने प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे। उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, जहाज से लेकर के जब वहां पहुंचे वहां तक, लेकिन कृष्ण उनका रक्षा किए, क्योंकि भक्त लोग भगवान के बिहाफ में कार्य करते हैं। भगवान का जो मिशन है उसको भक्त लोग पूरा करते हैं। भगवान का मिशन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजामि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि जुगे जुगे। धर्म की स्थापना करना भगवान का मिशन है। तो भगवान के मिशन में ब्रह्मा जी सहयोग करने जा रहे थे, तो नेचुरली था कि भगवान उनका रक्षा करेंगे। तो भगवान हयग्रीव का रूप धारण कर करके और आए और मधु और कैटव को चैलेंज किए। बाप बेटों को चैलेंज कर रहा है, ये मधु कैटव बेटे थे लेकिन ये अमेरिकन बेटे थे, बाप को भूल गए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि मेरा बाप कौन है, देखे भी नहीं थे, वो खोज रहे थे कि मेरा उत्पत्ति का स्थली कहाँ है, मेरा बाप कौन है, जानना चाहते थे। या इन्हें इतना शक्ति हो गया था कि बाप को भी केयर नहीं कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भाई ये आसन ब्रह्मा जी का है, इनका अलग काम है, तुम लोगों का ये काम नहीं है। तो लोग आंख दिखाने लगे भगवान को भी। अब लड़ाई होनी, जब क्रोध आया तो लड़ाई होनी शुरू हुई। खूब लड़ाई हुआ, खूब घमासान लड़ाई हुआ, 5000 वर्षों तक ये लड़ाई चलता रहा, मधु कैटव और विष्णु में 5000 वर्ष लड़ाई चला। भगवान को हारना पड़ा। भगवान कहे भाई मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, आज तक ऐसा कोई लड़ाई नहीं किया, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, वर मांगो, क्या तुम लोगों को वर चाहिए। तो मधु कौटव, इनको तो अहंकार था, अहंकार मुद्धात्मा करता हम इति मन लेते, कहते हैं आप किसको मूर्ख बना रहे हो, हार आप रहे हो, हम नहीं हार रहे हैं, आपसे बड़े हम हैं, आप हमको क्या बर दोगे, आप बर मांगो, क्या आपको बर चाहिए बताओ, आपको क्या बर चाहिए बर मांगो, आपको जीवन का पड़ा हुआ है, हमको तो मैया ने अच्छा वरदान दे दिया है, हम तब तक नहीं मरे जब हम मरना नहीं चाहेंगे, आपको जीवन का पड़ा हुआ है, बताओ क्या बर मांग चाहिए। کہو تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ماریں گے، لیکن ہار مان لو تو بھگوان تو اسی کھن کا پرتیکشا کر رہے تھے کہ یہ کھن کب آئے، کیونکہ لکشمی جی کا دیا ہوا بردان تھا وہ کیسے بھگوان کاٹ سکتے ہیں، بھگوان بھکتوں کے بردان کاٹتے نہیں پورا کرتے ہیں، بھگوان بھکتوں کہے گئے بات کو پورا کرتے ہیں۔ تو بھگوان نے دیکھا کہ یہ لوگ اہنکار میں مدمت ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے، یدی آپ ہمیں بر دینا چاہتے ہو تو ہم آپ سے بر مانگ رہے ہیں، ہم آپ کا پران مانگ رہے ہیں، ہم آپ دونوں کا پران مانگ رہے ہیں۔ اب تو بند گئے تھے، کرے کیا، اس پرکار سے بھگوان نے مدھو اور کیٹو کو دمن کیا، تب سے ان کا نام ہوا مدھو سودن۔ سودن مطلب ختم کرنا یا دمن کرنا، تو بھگوان نے ان کو سودن کیا اس لیے انہیں مدھو سودن کہا۔ مدھو کا اب کرشن کے پرتی کیسے اپلائی ہوتا ہے مدھو سودن، اس پر تھوڑا ہم لوگ وچار کریں گے۔ تو یہ تو مدھو کیٹو کا کتھا تھا، اور کرشن پر کیسے اپلائی ہوتا ہے مدھو سودن سب، اس کو ہم ابھی کریں گے۔ مدھو کا مطلب ہوتا ہے ہنی، شہد، مدھو۔ تو جو مدھو کو بھی پراست کر دیتا ہے وہ ہے مدھو سودن، جو مدھو کو بھی پراست کر دے، یعنی مور سویٹر دین ہنی۔ اس بھوتک سنسار میں مدھو کیا ہے ناجی؟ لکشمی، پیسہ، منی از مور سویٹر دین ہنی۔ اور پیسہ ملنے پر کیا ہوتا ہے؟ اہنکار، فالسیگو۔ تو جو فالسیگو ہے وہ مدھو سے بھی کہیں زیادہ مدھرتم ہے۔ تو مدھوسودن کیا کرتے ہیں کہ ویکتی کے اندر کے اہنکار کو ختم کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ کہلاتے ہیں مدھو سودن، یا موہ مایا یہ مدھو کے سمان ہے، پریوارک آسکتی یہ مدھو کے سمان ہے۔ ارجن جب گیتا کے پرتھم ادھیائے میں کہتے ہیں آپ مدھو سودن ہو، اپنے آسکتی کو بتا رہے تھے کہ میں آسکت ہوں، انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مدھو سودن ہو، آپ اسروں کو مارنے والے ہو۔ تو مانو بھگوان ہنس رہے کہ تم میں بھی ایک اسر آ گیا ہے، اور وہ جو اسر ہے وہ ہے تمہاری پریوار کے پرتی آسکتی، اور اسی کو مارنے، اسی لیے تو اچھا شبد بتایا ہے، اچھا ورڈ بولا ہے مدھو سودن، اب میں ماروں گا۔ تو جہاں بھی مدھو سودن شبد آیا ہوا آپ دیکھیں، دیکھنا، ریفر کرنا، ہمیشہ اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور اسی مدھو کے چلتے، اسی اہنکار کے چلتے، اہنکار مڈھاتما کرتا اہمتی منتے، ویکتی اپنا کو کرتا مانتا ہے، اور آج سب لوگ اسی کرتاپن میں، اسی مدھو نام کے اسر کے ساتھ میں ہیں۔ تو جو بھگوان بھگوت گیتا، بھاگوت اتیادی گرنتھوں کے گیان سے اس مدھو نام کے اہنکار کو ختم کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مدھو سودن۔ تو مدھو مکھی کو بھی مدھو کہا جاتا ہے، اور کرشن کو بھی مدھو کہا جاتا ہے۔ کمل پشپ سے یا پشپوں کے مدھتا کو مدھو مکھیاں آسوادت کرتی ہے، اور بھکتوں کے پریم روپی مدھتا کا آسوادن بھگوان کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہے مدھو سودن۔ بدگدھ مادھو ناٹیہ میں श्रीपाद रूप गोस्वामी इस बात को वर्णित किए हैं। मैं किताब ढूंढना बहुत पहले पढ़ा था, किताब ढूंढ रहा था, भक्तों से कहा भी, लेकिन मेरे घर पर है, चढ़ नहीं पाता हूं, श्रेणी से छोड़ दिया हूं। जो भी याद है बताने का प्रयास करूंगा। तो क्या हुआ कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में बैठे हुए थे। राधा रानी बल्कि कृष्ण के गोद में थी, वहां पर अन्य सखियां थी। राधा रानी का जो मुखारविंद है वह बहुत ही सुगंधित है, तो एक मधु बार बार आकर के, पुरुष भूषण तुम पर भी मधु अटैक कर रही है, उसका नाम है निद्रा। निद्रा भी मीठा होता है ना, वो भी क्लास में। तो बार बार राधा रानी के मुखारविंद पर वह मधु आ रही थी। तो राधा रानी अपने आंचल से अपने मुख को ढक लेती थी, एक तरह से पर्दा होता है कृष्ण के और राधा रानी के बीच में। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं कि कृष्ण देख रहे थे, इसलिए कि श्रीमती जी को दुख हो रहा था, भय हो रहा था उस मधु के चलते। और चूंकि कृष्ण राधा रानी को अपने जंघे पर बैठाए थे तो भगाना नहीं चाहते थे, राधा रानी को हटाना नहीं चाहते थे उसे हटाने के लिए। तो कहे करे कोई है, इसको हटाओ, मधु को हटाओ यहां से। तो मधुमंगल कृष्ण के सखा वहीं थे, वो मधु को बहुत दूर तक भगा दिए और बड़े खुश होकर के आए। राधा रानी अभी भी ऐसे पर्दा लगाई हुई है, ताकि वो मधु पुनः ना आ जाए, क्योंकि राधा रानी का जो मुखारविंद है वो मधु के चुंबन के लिए नहीं है, बल्कि कृष्ण के चुंबन के लिए है, वो कृष्ण के लिए है। तो मधु पुनः ना आ जाए इसलिए राधा रानी वो पर्दा लगाई थी। और इधर मधुमंगल बड़ा खुशी मन से आया और कहा कि मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। अब राधा रानी जब सुनी कि कृष्ण को देख नहीं पा रही थी, जब सुनी कि मधुसूदन चला गया, मधु चला गया, मधु चला गया, तो वो समझे कि मधु मतलब कृष्ण, कृष्ण चले गए। अब राधा रानी मूर्छित हो गई, क्योंकि पर्दा लगा दिखाई नहीं पड़े, कृष्ण के साथ थी। श्रीपाद रूप गोस्वामी ये विप्रलम्ब भाव का व्याख्या किए हैं। इस प्रकार से जब वहां पर तोता और तोती दोनों बैठे थे, जब देखी तोती देखी कि श्रीमती राधा रानी मूर्छित हो गई, तो कृष्ण 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 कहने लगी, तो उन्हें होश आया। लेकिन फिर भी भय था कि हमारे मधुसूदन चले गए, मधुसूदन नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो लगी रोने। और राधा रानी को मूर्छित देकर कृष्ण ही मूर्छित हो गए थे। तो इनको जगाया तोता, राधा राधा कह कर करके। तो इस प्रकार से दोनों जगे, तो ये विप्रलम्ब भाव है, मानो ऐसा परिस्थिति हुआ जैसे बहुत दिन के बाद दोनों कोई मिला हो। तो जब दो मिलते हैं बहुत दिन के बाद, जब आनंद उत्पन्न होता है तो क्या आता है, आंख से आंसू आता है, प्रेम का आंसू गिरता है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि उनके आंसू से एक तालाब बन गया जो नंदगांव और बरसाना के बीच में वह स्थली है, उसे कहा जाता है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर की उत्पत्ति हुई इन मधुसूदन के चलते। तो मधुसूदन फेमस है, है? तो इस प्रकार से ये हैं मधुसूदन। तो यहां पर पूर्व श्लोक में بتایا گیا ہے کہ برہما جی کو بھگوان بچائے اور برہما جی کو بید دیے تاکہ سرشٹی کر سکے. تو بھگوان سرشٹی کا رکشا کیے, برہما جی کا رکشا کر کر کے اور بید کو دے کر کے. एवं जगत उत्पत्ति प्रकारम उक्त अथ रक्षा प्रकारम आह. अब तक से उत्पत्ति संबंधी बातें हुई पिछले श्लोक में, अब श्लोक संख्या 38 में रक्षा संबंधी बातें कही जा रही. इत्थम उचित कालेषु तै तै स्वच्छोपातौ शुद्ध सत्वमयी नृत्रियग ऋषि देव जसा अवतार ही राम कृष्ण वराह परशुराम नारद उपेन्द्र मत्स्य अवतार ही. इस प्रकार से इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार से, इत्थम भूत गुणो हरि, इस प्रकार से भगवान के गुण हैं. अब आते हैं इस श्लोक पर, ध्यान दीजिए एक वर्ड पर. इत्थम इस प्रकार से और पालन करने के लिए भगवान आते हैं. भगवान का यहां पर एक नाम आया हुआ है, वह है त्रिजुग. भगवान तीन युगों में, चार युग है सतयुग त्रेता द्वापर और कली, चार युग है. यहां पर तीन युग के लिए जो भगवान आए हैं त्रिजुग कहा गया है, और चौथे युग में जो भगवान आए हैं उनके लिए कहा गया है कलयुग में सदल छन्न कलौ. कलयुग में वे छन्न रूप में आए हैं. तीन युग कहा गया है यहां पर, सतयुग द्रोपा सतयुग द्वापर और त्रेता बात नहीं कहा गया है, या सतयुग त्रेता द्वापर जो भी कह लो वो बात नहीं कहा गया है. तीन युग कहा गया है, लेकिन कलयुग को स्पेशल कैटेगरी दिया गया है, क्योंकि कलयुग वाले सब स्पेशल हैं, हम सब लोग स्पेशल हैं, सब मामले में स्पेशल हैं, भक्ति के मामले में स्पेशल हैं, दादागिरी करना इसमें स्पेशल है, चोरी करना, जो भी करना है, धर्म को नहीं मानना, जो करना है सब में स्पेशल हैं. यह है कलयुग का गुण, इसको मैं आगे बताऊंगा कलयुग के गुण को जब छन्न का बात करूंगा. केवल मैं इस श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि श्लोक में क्या कहा गया है. यहां पर एक बात कहा गया है कि भगवान चारों युग में आते हैं सृष्टि का रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान चारों युग में आते हैं. तीन युग में आते हैं त्रिजुगी के रूप में, और चौथे युग कलयुग में जो आते हैं वो छन्न अवतार के रूप में आते हैं. भगवान क्यों आते हैं, उनके आने का कारण क्या है, गीता में हम लोग सुने हैं कि भगवान क्यों आते हैं. जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, भक्तों का रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए. भागवतम में अन्यत्र बताया गया है भगवान के आने का. जब सुत गोस्वामी समस्त अवतारों का वर्णन कर लिए तो अंत में कहते हैं एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे. अब तक से जितने हैं ये सब अंश या कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है. और कैसे आते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब व्यवस्था जो है इंद्र के अरि, इंद्र का मतलब इंद्र भी हुआ और इंद्र का मतलब शासक भी हुआ, जब इस संसार के शासन व्यवस्था में कुछ तकलीफ होता है तो भगवान आते हैं. रावण शासन व्यवस्था में परेशानी कर रहा था, कंस शासन व्यवस्था में परेशानी कर रहा था, दुर्योधन शासन व्यवस्था में परेशानी कर रहा था, तो इन लोगों का दमन करने के लिए भगवान मधुसूदन आए. तीन युगों में। यहां पर बताया गया भगवान के आने का कारण, और आकर भगवान दो काम करते हैं। कहते हैं लोकान विभावयसी, लोकान मतलब हम लोग या लोक लोकांतर, दोनों ले सकते हैं। लोकान विभावयसी, संसार का रक्षा करने के लिए। जब संसार शब्द कहा गया तो संसार में रहने वाले भी आ जाते हैं, उनका रक्षा करने के लिए। और तो एक काम एक करते हैं, उसके बाद हंसी जगत प्रतिपान, और जगत के जो विरुद्ध काम करते हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं जगत को मेंटेन करने में, उन लोगों को हंसी, उनका हनन करने के लिए, उनका हनन करने के लिए और लोगों का रक्षा करने के लिए। और तीसरा बात जो है वह है कि धर्म का स्थापना करने के लिए। धर्म पासी, धर्म का पासी या पाही, पाहिमाम कहते हैं, पाहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो, तो पासी मतलब रक्षा करने के लिए। धर्म पासी कौन आता है? जो आते हैं वे कौन है? महापुरुष, वे भगवान हैं, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे महापुरुष हैं। और कब कब आते हैं, कैसे आते हैं? तो कहा गया है युग अनुवृत, युग युग में आते हैं, और युग के अनुरूप आते हैं। किस युग में कौन रूप चाहिए उसी रूप से आते हैं। मैं आप लोगों को एक श्लोक दो श्लोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करूंगा। एक समय की बात है जब देवता लोग सब कुछ जुआ में सब कुछ खो गए थे, सब असुर लोग ले लिए थे, और देवता लोग भिखमंगे हो गए थे, रोड छाप हो गए थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। तो बेचारे किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। कहा जाता है पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती है, बेटा पर दुख आता है तो माता को ज्यादा दुख होता है। तो माता अदिति को बहुत दुख था। उस समय कश्यप मुनि तपस्या करने के लिए गए थे, तपस्या कर करके जब आए तो देखे ये भैया ये पंखा बंद कर दो, ये भाई हेलीकॉप्टर क्यों चालू कर दिया, कथा में मन नहीं लग रहा है क्या? कथा सुनो, पता नहीं चलेगा कि हवा है कि गर्म है क्या है, हमको डिस्टर्बेंस तकलीफ है क्योंकि मन वहीं चला जाता है, तो फिर इधर नहीं कथा पर नहीं रहेगा, उधर ही चला जाएगा। हाँ क्या बात हो रही थी? कश्यप जी आए, तपस्या खत्म हुआ, आए देखे घर सुनसान पड़ा हुआ है, तो अब हालचाल हुआ, वो तो जानते सब कुछ, फिर भी अदिति अपना इच्छा प्रकट की क्या करना चाहती थी। तो कश्यप मुनि के दोनों पुत्र हैं, दो पत्नियां अदिति और दीति, दीति के पुत्र लोग जो हैं वो असुर लोग हैं और अदिति के पुत्र लोग देवता लोग हैं। तो एक बाप कैसे चाहे कि दोनों आपस में लड़ाई करके मर जाए? तो वे चाहते नहीं थे, पहले समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किए कि भाई सब कर्म का फल है, जिसका जिसके भाग में जो लिखा होता है वही मिलता है, सब समझाए, लेकिन अदिति को समझ में नहीं आ रहा था। स्त्रियों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये कहा जाता है बाल हट और स्त्री हट, ये दो हट ऐसा होता है महाभारत करा देगा। रवि नंदन मालूम है स्त्री हट बड़ा खतरनाक होता है, द्रौपदी ने कहा अपना मैं कैसे नहीं बांधूंगी एनीवे तो भगवत अब कश्यप मुनि सोचे मैं क्या करूं तो सोचे कि अब कोई नहीं करेगा तो भगवान ही करेंगे तो भगवान के भक्ति में कश्यप मुनि लगा दिए अदिति को यही साधु का काम है यदि कोई हमारे पास आता है किसी रूप में तो उसको किसी न किसी प्रकार से भगवान के भक्ति में लगा दो बहुत प्रकार से लोग हमारे पास आते हैं हम लोगों के पास प्रभु जी पत्नी हमको परेशान कर रही है बेटे हमारा बात नहीं मानते हैं नहीं करते हैं अब थोड़ी जगह बेटा गंड मारूंगा मैं थोड़ा मंत्र तंत्र दे दूंगा अरे भगवान को भजन करो चंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ये पावरफुल मंत्र है मंत्र से सब कुछ हो जाता है मंत्र विश्व उतारता है ये महामंत्र है सब सब संसार का विश्व उतार देगा ये तो जप करो तो उन्होंने पयोव्रत करने के लिए अदिति को बताया अदिति पयोव्रत की पयोव्रत के परिणाम स्वरूप भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आए अब देवी बड़ी प्रसन्न हो गई क्यों भगवान अब आ गए हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा तो भगवान को प्रणाम वणाम किए सब लोग कश्यप मुनि प्रणाम किए सब उनका गुणगान किए अदिति माता तो भगवान पहले ही बोलना शुरू किए कहे कि माता मैं जानता हूं कि आप किस लिए तपस्या की हो आप चाहती हो कि आपके पुत्रों का जो धन वैभव है वो आज खत्म हो चुका है वो आ जाए यही चाहती हो ना
बिल्कुल
आप चाहती हो कि जो आपके विपक्षी हैं असुर लोग हैं वो मारे जाएं ताकि उनकी पत्नियां रोएं तो आपको अच्छा लगे यही ना भगवान ने कहा कि माता एक बात कहूं आपका इच्छा मैं पूरा करूंगा आपके बच्चों का जो धन है वो दिला दूंगा यदि एम मिल जाए तो ठीक है ना मार करने की जरूरत नहीं है ना तो ठीक है कोई बात नहीं तो तैयार हो गई सोची तो भगवान ने कहा कि देखिए अब जाकर के अपने पति में मुझको देखिए और उनका खूब सेवा कीजिए जब पति प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके वीर्य से मैं आऊंगा पति का खूब सेवा की कालांतर में भगवान आए तो अदिति तो खुश थे कि भगवान काम करेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि माता मैं आपका इच्छा पूरा करूंगा लेकिन आज ये असुर लोग बड़े बलवान हैं प्राय अधुना ते असुरजुत्थना था आपारणीय इति देवी मे मति यत्ते नुकुलेश्वर विप्रगुप्त न विक्रमम तत्र सुखम ददाति हे देवी आज असुरों को परास्त करना बड़ा मुश्किल है थोड़ी देर गड़बड़ हो गया मैं इतना तपस्या किया भगवान कहते हैं कि असुरों को परास्त मैं नहीं कर सकता कहते अपारणीय मे मति मेरे मन के अनुसार मेरे मति के अनुसार आज उन लोगों को परास्त करना अपारणीय है उनको परास्त नहीं किया जा सकता है तो मानो कहते क्यों नहीं अरे आप तो भगवान हो आपके लिए असंभव क्या है तो कहते हैं इत्ते यत्ते आज के दिन वे लोग अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता उनके अनुकूल विप्र हैं यानी ब्राह्मण लोग आज उनके अनुकूल हैं जिससे वे लोग सर्वशक्तिमान हैं आज शक्तिशाली हैं ये है वैष्णवों का कृपा ब्राह्मणों का कृपा ब्राह्मणों का कृपा बहुत बड़ा होता है असुरों पर भेद हो जाए तो कहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में उन लोगों से लड़ाई मोल लेना ये सुख का साधन नहीं होगा लेकिन माता समय पर मैं करूंगा तो जब दूसरी बार भगवान आए तो चतुर्भुज रूप में भगवान आए प्रमाणित करने के लिए कि मैं वही हूं जो वचन दिया था आपको कि मैं आऊंगा मैं व्याख्या कर रहा हूं यहां पर जुगा अनुवृतम, जुग के अनुरूप भगवान आते हैं। ये सद्युग था, भगवान आए और जुग के अनुरूप भगवान रूप धारण किए। आए भगवान, सब लोग बड़े खुश हुए और भगवान ने कहा था कि आज मार पीट कर करके उनको हराया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कुछ करूंगा। तो जैसे लोहा लोहा को काटता है, तो भगवान जानते हैं कैसे आज असुरों का विनाश किया जा सकता है। आज ब्राह्मणों के कृपा से ये लोग अपराज्य हैं। यदि ब्राह्मणों के चरणों में कोई अपराध एक करेंगे तभी ये परास्त हो सकते हैं। तो भगवान ब्राह्मण रूप धारण कर करके आए। यत्तद् बपु भाति विभूषणादौ
अव्यक्त चित व्यक्तम धारयद हरि बभूवतेने वसबा मनो बटु संपश्यतो दिव्य गति यथा नट।
सब लोगों के सामने सब देख रहे हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि से विभूषित हैं। वे भगवान तुरंत उन लोगों के सामने संपश्यतो, सब देख रहे थे, उनके सामने ही भगवान बूम एक छोटा बटु बामन का रूप धारण कर लिए, क्योंकि वही रूप था। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण का रूप भगवान बड़ा भी धारण करते हैं, छोटा क्यों धारण किए, बटु क्यों बन गए? यदि बड़ा ब्राह्मण हो तो उसका व्यवहार चार चरण अलग होता है, और छोटा जब बच्चा है, ब्राह्मण का ही बच्चा है, तो स्वाभाविक है कि लोग बड़े खुश होते हैं। और ये परिणाम हम देखते हैं कि जब ही बामन भगवान आए बलि महाराज के यज्ञशाला में, तो उसको भगवान को देख करके जितने ऋत्विक लोग थे सब खड़ा हो गए। अरे भैया बंद करो ना, मोबाइल क्यों यहां लेकर आते हो? भगवान को देख करके बलि महाराज जग करना छोड़ दिए और खड़ा हो गए और उनका गुणगान करने लगे। उनके सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए कि गुणगान करने लगे और कह दिए कि हे बामन, बटु शब्द आया हुआ है, हे बटु यद्यद वांछसी बटु, हे बटु जो जो वस्तु तुम मांगोगे मैं वह वस्तु दूंगा। छोटे थे इसलिए, बड़े होते तो सब सोचते मांगिए क्या चाहिए दूंगा, लेकिन छोटे थे तो जो तो भगवान इसलिए बटु का रूप धारण करके आए थे, बामन का रूप धारण करके आए थे। तो लोहा लोहा को काटता है, तो भगवान ब्राह्मण कहे कि पहले कहे थे भगवान कि ये लोग विप्रगुप्ता है, ये ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित हैं, तो ब्राह्मण के प्रति अपराध करेंगे तभी इनको खत्म किया जा सकता है। तो ब्राह्मण के प्रति अपराध क्या किए? जिस ब्राह्मण के कृपा से बलि महाराज इतने शक्तिशाली हुए थे उसी ब्राह्मण का निरादर कर दिए। शुक्राचार्य ने कहा अरे बैरोचन तुमको ये मालूम नहीं है, ये विष्णु है, ये विष्णु है देव, ये बटु का रूप धारण कर आया है, तुम्हारा सब कुछ लेगा, अपने लिए नहीं लेगा, वो देवताओं के लिए लेगा, तुम्हारे पास एक छताक नहीं रह जाएगा। और जो तुम कहे हो ना तीन पग देने के लिए, ये दो पग में सबको नाप लेगा, तीसरा पग कहां दोगे? झूठा तो कहीं का, इसके लिए तुम नरक में जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद शुक्राचार्य सोचे कि बलि असमंजस से पड़ेगा, भाई वचन दे दिया हूं अब झूठ कैसे बोलूं। तो बल्कि वेद के वाक को शुक्राचार्य ने कोट किया और कहा कि भाई देखो बलि असमंजस में मत पड़ो, छह ऐसे स्थान है जहां पर झूठ बोल सकते हो
और वह झूठ बोला झूठ नहीं कहलाता है। स्त्रीसु नरम विवाहे च, स्त्रीसु मतलब पति पत्नी का जब बातचीत होता है, पति कह दिया पत्नी को कि तो मैं तुमको मुन पर ले जाऊंगा, और पत्नी खुश हो गई, सब वो कह रही है अरे मेरा पति बोला मुझे मुन पर ले जाएगा, सोचती नहीं है वो, खुश हो गई है। और बाद में कहे आप हमको हम मुन पर ले चलोगे, और कहे पागल हो गए हो क्या, मुन पर कैसे जाएंगे है? तो पत्नी तू झूठ बोल रहा है, तो इस झूठ को झूठ नहीं माना जाता है। स्त्री सु पति पत्नी के बात में इसका मतलब ये नहीं कि पति झूठे बोलते रहे या पत्नी झूठ बोलती रहे, ये बात नहीं है, हंसी मजाक वाला झूठ। स्त्री सु नरम विवाहे च, जो बिहारी पी वाले जानते हो यहाँ तिलक प्रथा खूब होती है, नरम विवाह और गरम विवाह जानते हो आप, विवाह से पहले नरम विवाह कहलाता है और विवाह के बाद गरम विवाह होता है। तो नरम विवाह च, अभी तो शायद बंद हो गया है, पहले था कि लड़की काली कलूटी है, दूसरा अच्छा लड़की दिखा देंगे लोग कि हमारी बेटी है और विवाह हो जाएगा, और एक बार हो गया तो गर्म हो गया, उसको तोड़ नहीं सकते हो। वो क्या करते हैं, दूसरे अपने घर में आजकल तो बैल लोग नहीं, ट्रैक्टर रखते हैं, पहले बैल रखते थे, दो चार पांच दूसरे का बैल लाकर अपने द्वार पर बांध, ऐसा अपने ही बैल है, अपने ही सब है, दूसरे खेत ऐसा अपना ही खेत है। वो लड़का मैट्रिक फेल है, दसवां दसवां फेल है, वो बीएससी पास है। तो नरम विवाह है, विवाह से पहले बोला गया झूठ झूठ नहीं माना जाता है। शास्त्र कहता है स्त्री सु नरम विवाह है च प्राण संकटे, या प्राण संकट में हो तो कुछ भी झूठ बोल लो, प्राण बचाओ पहले, यह झूठ झूठ नहीं कहलाता है। प्राण संगते वृत्ति अर्थे, दो रुपये का सामान है चार रुपये में बेचो, दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मत मिलाओ, दो का सामान है चार में बेचो, दो का सामान सौ मत बेचो, जिससे आजकल हो रहा है। वृत्ति अर्थे यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ कमाओ, इसमें बोला गया झूठ जनित कहलाता है वृत्ति अर्थे। और गो ब्राह्मण हिताय च, वैदिक संस्कृति का रक्षा करने के लिए, वैष्णव का रक्षा करने के लिए और गौ माता का रक्षा करने के लिए ये बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता है। न जुगुप्सितम, ये झूठ नहीं है, ये वेदों में कहा गया है। तो शुक्राचार्य वेद को कोट कहे, बलि महाराज ने कहे गुरुदेव आपने जो बात सही कहा, लेकिन मैं थोड़े से राज्य के लिए, ये धन के लिए मैं झूठ बोल दूं? अरे आज मेरे पितामह प्रहलाद जी चमचमाते हुए तारे के समान हैं, क्या उनके कुल में मैं कलंकित हूं? मेरे पिता जानते हुए भी कि ये देवता लोग हैं अपने शरीर को दान दे दिए, क्या मैं अपने कलंक को कलंकित करूं? ऐसा नहीं होगा। आप कह रहे नरक में, अरे नरक में जाना पड़े मैं नरक में जाने को तैयार हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा हुआ, कहा बदमाश, नहीं कहा मेरा बात नहीं मानता है, जाओ तुम धन लक्ष्मी से बम खत्म हो जाओगे। फिर भी शुक्राचार्य से नहीं रहा गया। और बलि महाराज संकल्प करने के लिए अपने वो पहले लोड़ा था ना, आज क्लास थोड़ा लंबा चलेगा कि लेट शुरू हुआ था, अभी मैं अभी तीसरे लाइन पर हूँ, चौथा लाइन चतर महाप्रभु लाए, मैं जानता हूं कि अपना निताई माधव प्रभु ने बोल दिया है, लेकिन मैं थोड़ा अलग हटकर बोलूंगा। एनीवे, तो वो अपना कमंडलू से पानी देने के लिए तैयार हो गए, अपना संकल्प कराने के लिए, और छत पर पानी देते हैं ना संकल्प कराने के लिए, तो पानी देने के लिए ये शुक्राचार्य को अपने पेट पर लगा हुआ था कि सब दे हमारा क्या होगा, ये तो मरेगा मरने तो हमारा मर, हमें नहीं मरना चाहिए। तो शुक्राचार्य टोटी में प्रवेश कर गए, तो भगवान वामन देव जब प्रकट हुए थे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग वस्तु उनको दिया था, जैसे बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ दिया था, किसी ने मुंजल दिया था यानी कुश, कुश किसी ने कुश भी दिया था, वो कुश यही कुश एकमात्र अस्त्र था वामन देव का। तो टोटी में प्रवेश कर गए थे कौन, शुक्राचार्य। वो नहीं चाहते थे कि ये संकल्प ले, भगवान समझ गए, वो कुश निकाले और टोटी में लगा दिए, उनका एक आंख फूट गया, तब तो उनको गुस्सा आया, तब गुस्सा आया और श्राप दिए। तो ब्राह्मणों के प्रति अपराध हुआ, पहले ब्राह्मणों को खुश किए थे और ब्राह्मणों को अपराध हुआ। तो आप लोग ध्यान करना, यदि भगवान को कुछ देना है, यदि पत्नी देने जा रही है और आप बोलो कि मत दो, तो जो शुक्राचार्य का हाल हुआ था ना, वही सबका हाल होगा, आंख फूट जाएगा, चाहे पत्नी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। भगवान को देने मत रोको, अन्न के लिए रोक लो। एनीवे, तो मैं कह रहा था जुग अनुवृतम, युग के अनुसार, समय समय के अनुसार भगवान आते हैं। तो इस श्लोक में वही तीन बात, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय दुष्टताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे, ये पालन है। तीन चीज से भगवान पालन करते हैं, साधुओं का रक्षा कर करके, असुरों का विनाश कर करके और धर्म का स्थापना कर कर करके। तो भगवान इस श्लोक में भी तीनों बात आया हुआ है। लोकान विभावयसी, लोक का रक्षा करने के लिए, जगत प्रतिपान हंसी, और जगत के जो विरोधी थे, जो बाधा उत्पन्न करने वाले थे, उन लोगों का हनन करने के लिए, और धर्म पानसी, और धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं, जुगानुवृत्यम, नृ, नृ मतलब मनुष्य के रूप में, यानी राम और कृष्ण के रूप में, त्रियक पशु के रूप में, शुकर, बराह, हयग्रीव पशु के रूप में, ऋषि नारद, परशुराम इत्यादि के रूप में, देव, अभी हम कथा सुने बामन देव का, बामन देव के रूप में, झस मच्छप कच्छप अवतार, भगवान जब समुद्र मथन हो रहा था तो सुमेरु पर्वत जा रहा था, तो उसका रक्षा करने के लिए भगवान एक साथ कितना अवतार लिए, नीचे कच्छप अवतार लिए, उस सुमेरु पर्वत को बैलेंस करने के लिए भगवान ऊपर बैठ गए। साथ साथ जब बासुकी को मथनी का रस्सी बनाया गया था, तो भगवान वहां पर देवताओं के साथ में थे, वो भी अलग कथा है, लेकिन अभी समय बीतते जा रहा है। उसके बाद भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आ गए, एक साथ में कितना अवतार भगवान लिए है? तो मछली के रूप में महासत्वर्त का रक्षा किए, वेदों का रक्षा किए, और मत्स्य अवतार में दो असुरों को भगवान मारे, हयग्रीव का और अंजना नाम का एक असुर था, उसको मारे। तो अवतार ही बहुवचन है, एक नहीं अनेक अवतार भगवान लेते हैं। अब आइए, छन्न कलौ यद भव त्रिजुगो अथ सत्वम, हे भगवान आपको, आप ही वे हैं, सत्वम आप वही भगवान हैं। नरसिंह देव को ये संबोधित करते हैं, आप वही भगवान हैं जो तीनों युग में आते हैं, और आपका नाम त्रिजुगी है। गर्गाचार्य जब भगवान का नामकरण कर रहे थे, उस समय यह बात आया हुआ है कि भगवान तीनों युग में तीन रूप में आते हैं, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गता, शुक्ल रक्त और पीत वर्ण से आते हैं। और अन्यत्र यहां प्रभुपाद जी कोट किए हैं, अब ये तीन रूप में आते हैं, अब चतुर्युग में यानी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब ये छन्न शब्द का मैं व्याख्या कर रहा हूं, छन्न अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो निताई माधव प्रभु कल बता दिए थे आप लोगों को, सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथाचार्य के बीच में जो वार्ता हुई थी, और ये श्लोक कोट किया गया था। प्रभुपाद इस श्लोक पर दो तीन बार लेक्चर भी दिए हैं, एक बार गौर पूर्णिमा के समय दिए हैं मायापुर में, एक बार हवाई में दिए हैं, तो कई एक बार इस पर लेक्चर दिए हैं। भगवान कलयुग में छन्न अवतार के रूप में क्यों आए? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, ब्रजनंदन श्याम सुंदर, द्वापर युग में आए थे और जब वे लीला कर रहे थे तो अंत में उन्होंने कहा था कि आज के बाद अब मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह उनके प्रतिज्ञा को तोड़वाने का प्रयास किए तो भगवान चक्का उठा लिए, तो चक्का अस्त्र शस्त्र है भी और नहीं भी है, लेकिन वे शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि को धारण नहीं किए अस्त्रों का विनाश करने के लिए। तब भगवान कैसे विनाश करेंगे और वो भी कलयुग के असुरों का? पहले के असुर लोग थे उनसे लड़ाई करें मजा भी आता था भगवान को, आज तो मच्छर लोग हैं, मच्छरों से लड़ाई कौन करेगा? मच्छर को मारने के लिए तलवार यूज करना अच्छा है, बुद्धिमानी है, तलवार तो लड़ाई के मैदान में, चाहे गन मारो मच्छर पर, वो बुद्धिमानी नहीं है। तो आजकल के असुर लोग मच्छर है। भगवान द्वापर युग तक अस्त्र धारण किए, कलयुग में नहीं। कलयुग में जो भी अवतार हुआ है, चाहे बुद्ध अवतार हुआ है या चाहे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए, ज्ञान को दिए। बुद्ध के रूप में भी भगवान बुद्ध को भी छन्न अवतार कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार कहा जाता है, दोनों में वे ज्ञान दिए। और जब प्रलय का समय आएगा तो कल्कि आएंगे तो वहां पर अपना सब कुछ कर लेंगे, वहां पर वैसा कुश्ती है, फ्री रेसलिंग है कलयुग कल्कि का, सब अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। तो छन्न भगवान गीता के अंत में कहे, हाँ ये प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ कि यह जो श्लोक है इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यहाँ पर वे छंद रूप में क्यों आए इसका वर्णन हम लोग अब सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान गीता के अंतिम बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो और मेरे शरण में आओ और तुम मैं रक्षा करूंगा, भगवान ये कहते हैं। अब कलयुग के लोगों पर क्या हम आदेश चला सकते हैं? वो द्वापर था। कलयुग के लोगों के विषय में थोड़ा जान ले, कैसे लोग हैं आजकल के, हम लोग कैसे हैं। भागवतम में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, अल्पायुषा सम्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतजो मंद भाग्य ही उपद्रुता। हम सब लोग उपद्रवी हैं, उपद्रव खड़ा करने वाले हैं और हमारे द्वारा किया गया उपद्रव जो है वह भक्ति में उपद्रव बनकर खड़ा हुआ है। आज लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, ये उपद्रव ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग। ये उपद्रव कौन खड़ा किया? सब पेड़ काट डालो, बंगलो बनाओ, रोड बनाओ, उपद्रव हम लोगों ने खड़ा किया तो मरो। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं अल्प आयुष सम्य, सम्य मतलब प्राय, प्राय कलयुग में लोगों के जीवन की अवधि, पुरुष भूषण सुन लो काम करेगा, अल्प आयुष कलयुग में लोगों के जीवन की अवधि प्राय अल्प होगी। पहले लोग सट्ठा पर पट्ठा होते थे, आज सट्ठा पर लट्ठा लगता है, यानी श्मशान घर जाते हैं। तो अल्प आयुष सम्य कला अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोगों का जो जीवन काल है बहुत कम होगा। मंदा कम बुद्धि वाले डल ब्रेन लोग हैं। सुमंद मतयो, यदि थोड़ा बुद्धि है भी तो रोटी कपड़ा मकान में लगे हुए हैं। यदि उसे भी फंस गए या उसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो मंद भाग्या, वो दुर्भाग्यशाली हैं लोग जिनको हरे कृष्ण भक्तों का संग नहीं मिल पाता है। और हरे कृष्ण भक्तों का संग मिल भी जाता है तो उपद्रुता,
विभिन्न प्रकार के उपद्रव हैं, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं जिसे हम भजन नहीं कर पाते हैं। तो मंद डल ब्रेन लोग हैं। अहंकार तो इतना है कि कहना क्या है, बुद्धि नहीं है कि अहंकार है। पहले बुद्धि था तब अहंकार था, पंडिताई था, पंडित लोग थे। जिसको बुद्धि होता है, कृष्ण संबंधी बुद्धि हो तो वो तो नम्र हो जाएगा, नहीं कृष्ण संबंधी बुद्धि नहीं हो तो दिग्विजयी पंडित हो जाएगा, उसमें अहंकार हो जाएगा। तो बुद्धि तो नहीं है लेकिन अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। तो यदि कृष्ण का उपदेश कोई कहे कि सब कुछ छोड़ो मेरे शरण में आओ, भगवान बोलेंगे, बोला तू कौन होता है बोलने वाला कि मैं छोड़ू? तू क्या हम कमा कर दिया है क्या? ऐसा हमारा कमाया हुआ है, क्यों छोड़ूंगा मैं? तुम्हारे कंस छोड़ दूंगा, हजार बात तुम्हारा बात क्यों मानेंगे? तो कौन होता है बोलने वाला? लोग चैलेंज करते हैं ना, हम गीता को नहीं मानते, भागवत को नहीं मानते, ये कहते हैं ना। तो गीता को नहीं मानते, भागवत कितने मूर्ख लोग तो हैं, जलाते हैं, वो अर्जक कहलाते हैं कुछ, बिहार में ज्यादा लोग ऐसे मूर्ख हैं, वो जला देते हैं किताब को, गीता भागवत को। कृष्ण को ही जलाते हैं, नॉन डिफरेंट है कृष्ण से। तो भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे मूढ़ लोग होंगे, तो मूर्खों को समझाने के लिए कड़ाई नहीं, प्यार करना चाहिए, प्यार से, प्यार से मूर्ख भी शांत हो जाता है। कंस को वसुदेव जी बड़ा बुद्धिमानी से समझाए, तब समझ गया कंस। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मूर्खों को समझाने के लिए छन्न रूप धारण किए। मूर्ख क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ज्ञान देने के लिए आए। कौन सा ज्ञान दिए? मूर्खता का कारण क्या है? अहंकार। और अहंकार का कारण क्या है? अटैचमेंट। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए, वैराग सिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भक्ति योग को देने के लिए आए, लोगों को भक्ति में लगाने के लिए आए, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए। शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, वही महापुरुष पुराण पुरुष आए लोगों में वैराग सिखाने के लिए, भक्ति देने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो और कोई नहीं है, वो श्री कृष्ण चैतन्य ही हैं, और हम लोगों के समान शरीर धारण करके आए हैं। कृपां बुधि यस तमहम प्रपद्ये, उन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति का दान देने के लिए। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। शुरू शुरू में इसी बात को कहा गया है कि भगवान क्यों आए छन्न अवतार में। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही तीन कारण बताए गए हैं भगवान के आने का। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुं सन्नतोज्ज्वलं रसां स्वभक्ति श्रिय हरिप्रत सुंदर अदुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे अस्फुरति व सुचिनंदन। कहते अनर्पित चरिम, जो बहुत दिन से अर्पित नहीं किया गया था, कोई अवतार अर्पित नहीं किया, अन्य अवतार आए थे मार काट में लगे हुए थे, धर्म का स्थापना करना था, उस उन्नत उज्जवल रस को देने का समय नहीं मिला। उस उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए भगवान आए हुए थे चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के भाव में आए हुए थे कृष्ण, राधा रानी के भाव का स्वादन करने के लिए आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों एक दूसरे का रहा स्वादन करने के लिए कि राधा रानी में कौन प्रेम है कृष्ण के प्रति, गोपियों में कौन प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण जानना चाहते थे। राधा रानी जानना चाहती थे कृष्ण कौन है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु छन्न रूप में आए थे।
राधा रानी के महिमा का गुणानुवाद करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे। भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम छन्न रूप में आया हुआ है और उसी छन्न राधा के नाम को प्रकाशित करने के लिए भगवान छन्न रूप में आए। राधा रो महिमा प्रेमी रसो सीमा जगते जनाए, यदि गौर न हईते तबे के हई तो के मन राखी ते। ये छन्न रूप से आए थे श्रीमती राधा रानी का महिमा बताने के लिए। कृष्ण यदि राधा रानी का हम बताए तो सब लोग अपने पत्नी गुणगान करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड का गुणगान करते हैं, अपने बच्चों को गुणगान करते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। और वैसे भी भगवान का गुणानुवाद भक्तों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये भक्तों के साथ भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है, भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं और भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भक्त लोग भगवान के एजेंट हैं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। भक्तावतारम भक्त्याखम नमामि भक्त सत्यकम, भक्त्यावतार भक्त के रूप में आए। प्रभुपाद जी तत्पर में बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णातिशा कृष्ण सांगो पांगास पार्षद जग गई संकीर्तना प्राय जयंती ही सुमेरसा। मैं इस श्लोक का व्याख्या करूंगा बाद में क्लास को, हम यही स्थापन कर रहे थे। बहुत चल सकता है ये छन्न को लेकर के, लेकिन छन्न को छन्न ही रहने दीजिए, आगे और लोग बताएंगे। तो कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण, ये छन्न अवतार को कैसे जानेंगे कि कृष्ण ही है? कहते हैं एक कृष्ण का कृष्ण, कृष्ण वर्ण कृष्ण के वर्ण का वर्ण है ना, कितने वर्ण है? चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्र, चार वर्ण। तो ये कृष्ण के वर्ण के हैं, कृष्ण के जाति के हैं। कृष्ण किस जाति के हैं? हैं भगवान जाति के हैं, उनका जाति है भगवान। कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है। कृष्ण वर्ण कृष्ण भगवान है। और कृष्ण वर्णति, जो कृष्ण का ही हमेशा वर्णन करते रहेंगे बिना भेदभाव का, सबको कृष्ण को देंगे। जिसके पास पात्र है उसको भी, जो पात्र नहीं उसको पात्र बनाएंगे देंगे। पशु पक्षियों को सबको दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये कृष्ण का वर्णन करेंगे, कृष्ण के जाति वाले हैं और कृष्ण अवर्ण, कृष्ण काले थे ये अवर्ण है, यानी कृष्ण के समान नहीं है, ये अलग है। कैसे हैं? तुषाम गोल्डन है। ये श्लोक था, प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे थे भगवान चेतन महाप्रभु के सौंदर्य का है फ्रांस में। तो एक डिवोटी बोला कि प्रभुपाद क्या चेतन महाप्रभु हम लोगों के समान थे? तुषाम मतलब गोरा वर्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं तू लोग तो कोढ़ी के समान लगते हो, व्हाइट लेपर्सी तुमको हो गया है। चेतन महाप्रभु गोल्डन थे, तुषाम मेल्टेड गोल्ड, कृष्ण वर्ण तुषाम, कृष्ण वर्ण काले नहीं है, कैसे हैं? गोल्डन अवतार हैं, गौरांग हैं, लेकिन हैं कौन? कृष्णम, कृष्णम एक ही वचन, यानी कृष्ण ही हैं। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम आएंगे, सांगो पांगास पार्षद, अकेले नहीं आएंगे। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई नहीं रहता बांसुरी भगवान के साथ हमेशा नहीं रहता है, और नहीं तो मोर पंख रहता है, गवें रहती हैं, गोपियां रहती हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है सबके साथ में, अकेला रहने में व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, तो भगवान अकेले नहीं रहते हैं। वैसे ही भक्तों को अकेले नहीं जाना चाहिए, चाहे प्रचार में जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे यूथ प्रीचिंग के लिए जाओ, चाहे लाइफ मेंबरशिप के लिए जाओ, कहीं अकेले मत जाओ, नहीं तो डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और कुछ सोचना शुरू करेंगे,
प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया कि दो लोगों को जाना चाहिए, स्वयं हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु प्रचार करने, दो का पेयर था, जोड़ी में जाना चाहिए, अकेला नहीं, ये हमारी परंपरा है। तो भगवान चैतन्य आप सांगो पांगास पार्षद, अकेले नहीं सांगो उपांग के साथ में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु। भक्त्यावतारम भक्त्याखम नमामि भक्त शक्तिकम, ये लोग आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद इनके साथ में आए थे। और यज्ञ, वो यज्ञ करेंगे। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु को संतुष्टि के लिए किया गया कार्य, यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ वो यज्ञ करेंगे, भगवान कृष्ण को विष्णु को संतुष्ट करेंगे। कैसे? संकीर्तन, संकीर्तन के द्वारा। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम एतामक द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन, कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। तो जगै संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा, प्राय अभी शब्द आया और ही भी, इसका कहने का मतलब ये भगवत गीता के नौवे अध्याय के श्लोक को प्रमाणित, नौवा सतवां है, मनुष्याणाम सहस्यु कश्चिदति सिद्धे यतापि सिद्धानाम कश्चिन माम वित्त। तो संकीर्त प्रायी वही बात कि हजार हजार लोगों में से कोई कोई प्रयास करता है, उन प्रयास किए हुए हजार हजार लोगों में से कोई कोई सिद्धि को प्राप्त करता है, उन सिद्धों में से कोई कोई मुझे जानता है। तो वैसे ही संकीर्तन आंदोलन को कौन अपनाएगा? जगई संकीर्तन प्रायी, प्राय है मतलब कोई कोई, सब नहीं, ही मतलब निश्चय ही। कौन? सुमेध स, जो बुद्धिमान है, यानी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना लिए हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, नो डाउट वे लोग सुमेधा हैं। जय कृष्ण भजे सेई बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो आप हम सब लोग बुद्धिमान हैं प्रभुपाद जी कृपा से, इस कान के कृपा से हम लोग बुद्धिमान हैं, स्वीकार किए हैं। इस ट्रेजर को हम लोगों को रखना चाहिए, संजो करके रखना चाहिए, इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी हमको दिए हैं, ये ट्रेजर हाउस है हमारे पास, इसको संजो करके रखना चाहिए। मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बुद्धिमान बने रहना चाहिए ये नाम लेते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वही है छन्न कलौ यद भवा त्रिजुगो अथ सत्वम, परम सत्य भगवान त्रिजुगी हैं लेकिन कलयुग में छन्न रूप से आएंगे। श्रीपाद जी गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं कि कृष्ण का गुण से पहचान भी होता है कृष्ण कौन है। तो छन्न रूप से हैं लेकिन गुण से भक्त लोग, ये महाराज निमि और करभाजन ऋषि के बीच का बात है, कृष्ण वर्णा तुषार कृष्ण, उन्होंने कहा था महाराज निमि को, करभाजन मुनि ने कहा था चेतन महाप्रभु के विषय में भागवत में वर्णन किया गया, वेदों में वर्णन है, अनित्य वर्णन किया गया है। तो छन्न रूप से हैं लेकिन वेदों में भी इसका वर्णन है कि भगवान साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही चेतन महाप्रभु है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन और कमेंट, कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्राह्मण लोग असुर को क्यों सहायता देते हैं? ब्रह्म जानति ब्राह्मण है, जो भगवान को जानते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो
एक सेकंड, आपने चूंकि ब्राह्मण कहा, अल्बर्ट अभी प्रसाद नहीं है, ब्राह्मण कहा इसे मैं याद आ गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में आए थे, क्षत्रिय परिवार में नहीं आए थे, तो ब्राह्मण परिवार में आए थे क्योंकि ज्ञान देना था, ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना, वेद पढ़े भवे विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ये भी छन का एक एक्सप्लेनेशन है कि ब्राह्मण परिवार में है।
मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, सब ब्राह्मण जानते थे कि ये असुर लोग भगवान को और भगवान के भक्तों को तकलीफ देने वाले है, तो उनको क्यों सहायता करते थे तपस्या करने की, यज्ञ करने की? तो ब्राह्मण थे ना उनके साथ में,
पुरोहित थे उनके ना, गाइड करने के लिए
नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन भगवान को जानते थे, भगवान को तकलीफ दे रहे, भगवान को भक्ति भक्ति में बाधा दे रहे हैं, तो उनको जानते थे वो तकलीफ देने वाले थे, उनको वैसी सहायता क्यों करते थे वो तपस्या करने की, यज्ञ करने की?
इसमें बड़ा बात क्या है, इसमें समझना क्या है? ऐसे स्मार्ट ब्राह्मण लोग हैं जो करते हैं, और शुक्राचार्य का जहां तक बात है वो ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य वही भगवान के, वे आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, वो भगवान को जानते हैं। यदि नहीं जानते थे तो बामन लोग कैसे कह करे विष्णु है, ये साक्षात विष्णु है, हम साक्षात विष्णु, देवानाम कर्ज साधक, देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए आया हुआ है, सब जानते थे। लेकिन असुर लोग जो थे उनको भी रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, नहीं तो मजा कैसे आएगा उनको दिखाने के लिए। और कोई प्रश्न? हरिदास आज कहाँ है? अरे वो तो इधर बैठता है, रास्ता बदल दिया क्या? और कोई प्रश्न? आज सबको भूख लग गया लगता है। ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।